भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ध्यो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक है प्रायश्चित क्यों कैसे। हम इसमें समझेंगे कि आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ये प्रायश्चित इतना जरूरी क्यों है और इसे करने का सही तरीका क्या है।
जी, पूज्य गुरुदेव का जो मूल विचार है वो ये है कि हमारे अतीत के जो पाप हैं, जो गलतियां हैं, वो हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं।
हाँ, मतलब वो बस गुजरी हुई बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मफल का सिद्धांत बहुत पक्का है। जैसे अच्छे काम का अच्छा नतीजा मिलता है, वैसे ही बुरे कर्मों का दंड भी, वो मिलना ही मिलना है।
ये सोचना कि बस पूजा पाठ कर लिया, गंगा नहा लिए या नाम जप लिया और बच गए, ये तो फिर एक तरह की गलत फहमी हुई।
हाँ, ये एक भ्रम है। गुरुदेव कहते हैं भाई, जहर खाया है तो उसका असर तो होगा ही, सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। कर्मफल तो एक सच्चाई है, उसे मानना ही पड़ेगा।
तो ये जो पिछले पाप हैं, वो एक कर्ज की तरह है जिन्हें चुकाना ही होगा, चाहे कितने ही पुराने क्यों ना हो।
बिल्कुल, कर्ज की तरह ही समझिए। और ये न सिर्फ बाहरी जीवन पर बल्कि हमारी जो आंतरिक साधना है उस पर भी असर डालते हैं।
अच्छा, कैसे।
पूज्य गुरुदेव इन्हें आसुरी शक्तियां कहते हैं, पर ये कोई बाहर की भूत प्रेत या वैसी कोई चीज नहीं है।
तो फिर क्या है ये।
ये हमारे अपने ही बुरे कर्मों के नतीजे हैं। समझिए कि एक नेगेटिव माहौल बन जाता है हमारे अंदर ही, हमारे कर्मों की वजह से।
और ये माहौल हमारी पूजा, जप, ध्यान में दिक्कत पैदा करता है। मतलब मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं बनती।
हाँ, बिल्कुल यही होता है। ये शक्तियाँ, ये नकारात्मकता हमारे मन को भटकाती हैं, एकाग्र नहीं होने देती। और जब तक ये बाधाएं दूर नहीं होती, तब तक साधना का पूरा फल मिलना वो मुश्किल हो जाता है।
जैसे जमीन तो अच्छी है, पर पहले खरपतवार हटानी पड़ेगी, तभी फसल उगेगी।
बहुत सही उदाहरण है, बिल्कुल ऐसे ही।
इसी बात को समझाने के लिए स्वामी माधवाचार्य जी का वो दृष्टांत आता है ना।
हाँ, वो बहुत मार्मिक कहानी है। वृंदावन में उन्होंने 13 साल तक गायत्री अनुष्ठान किया।
13 साल
पर उन्हें कोई खास अनुभव नहीं हुआ, ना आत्मशांति मिली, ना कोई सिद्धि।
जी,
वो काफी निराश हो गए थे। फिर काशी गए, वहाँ किसी महात्मा ने उन्हें भैरव साधना करने को कहा, उन्होंने वो भी की।
और फिर
साल बार बाद भैरव देवता प्रकट हुए। लेकिन एक अजीब बात हुई, कहते हैं माधवाचार्य जी के मुख पर गायत्री का इतना तेज था कि भैरव उनके एकदम पास नहीं आ पा रहे थे।
अच्छा,
फिर भैरव ने क्या कहा।
भैरव ने ही उन्हें बताया कि आपके जो पिछले 13 साल के गायत्री अनुष्ठान थे वो बेकार नहीं गए, उनसे आपके पिछले 13 जन्मों के पापों का प्रायश्चित हुआ है।
ओ,
तो वो 13 साल सिर्फ पिछले सफाई में लगे।
हाँ, एक तरह से हिसाब बराबर हुआ। फिर भैरव ने कहा कि अब आप 14वें साल फिर से अनुष्ठान कीजिए।
और तब उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ।
जी, और उसके बाद ही उन्होंने आयुर्वेद का वो प्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान लिखा। तो इस कहानी से ये साफ है कि साधना सफल हो इसके लिए पहले पुराने पापों का निवारण यानी प्रायश्चित बहुत जरूरी है।
तो ठीक है, ये तो समझ आया कि प्रायश्चित जरूरी है, पर सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए। पूज्य गुरुदेव ने इसका कोई तरीका बताया है।
हाँ, उन्होंने इसकी एक बहुत व्यवहारिक विधि बताई है जिसके 3 मुख्य हिस्से हैं।
अच्छा, क्या है वो।
पहला है स्वीकारोक्ति, मतलब अपनी गलती को मानना,
स्वीकार करना, चाहे वो किसी और को दुख पहुंचाने की गलती हो या अपने ही विकास में आलस करने की।
हाँ, किसी भी तरह की भूल, उसे पहचानना और पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना, हो सके तो लिखकर या किसी भरोसेमंद मार्गदर्शक के सामने या सीधे भगवान के सामने उसे कह देना, जैसे ईसाई धर्म में कन्फेशन होता है ना।
हाँ हाँ,
बस वैसे ही। ऐसा करने से ही मन का बोझ बहुत हल्का हो जाता है।
ये तो हुआ पहला कदम। इसके बाद
दूसरा कदम है तपश्चर्या।
तपश्चर्या,
हाँ।
इसका क्या मतलब है यहाँ।
इसका मतलब है भविष्य में वो गलती दोबारा न करने का पक्का इरादा करना, और इस इरादे को मजबूत करने के लिए खुद को थोड़े अनुशासन में रखना, थोड़ा कष्ट सहना,
जैसे कोई व्रत उपवास।
हाँ, जैसे व्रत रखना, उपवास करना या कोई और संयम का अभ्यास करना। पूज्य गुरुदेव ने चांद्रायण व्रत का उदाहरण भी दिया है, जो चंद्रमा की कलाओं के साथ जुड़ा एक विशेष अनुशासन है। ये सब हमारे संकल्प को दृढ़ करते हैं।
ठीक है, स्वीकारोक्ति हो गई, तपश्चर्या भी। अब तीसरा कदम।
तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है क्षतिपूर्ति, जिसे इष्टापूर्ति भी कहते हैं।
क्षतिपूर्ति
मतलब जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करना।
बिल्कुल,
यही प्रायश्चित का असली सार है, अपने कामों से जो भी हानि हुई है उसे पूरा करना। सबसे अच्छा तो ये है कि जिसका नुकसान किया है सीधे उसी की मदद करें, उसी की क्षतिपूर्ति करें।
लेकिन अगर वो संभव न हो तो, मान लीजिए वो व्यक्ति अब है ही नहीं या पता नहीं कहाँ है।
हाँ, ये हो सकता है, तो ऐसे में समाज की सेवा के जरिए वो भरपाई करें, क्योंकि देखिए समाज तो एक ही इकाई है ना। उसके एक हिस्से को जो चोट पहुंचती है वो असल में पूरे समाज को ही लगती है।
हाँ।
तो समाज की भलाई करके हम उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।
अच्छा, तो मतलब हमने अगर बुराई की लहरें पैदा की थी तो अब अच्छाई की लहरें पैदा करनी है।
बिल्कुल,
पुण्य करके उस असर को काटना है।
एकदम सही,
पुण्य कर्मों से पाप कर्मों के असर को संतुलित करना है।
मुझे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि हो सके तो ब्याज सहित चुकाइए।
ब्याज सहित
मतलब?
मतलब जितनी बुराई या हानि की थी उससे कहीं ज्यादा भलाई करके उस कमी को पूरा करें,
ज्यादा अच्छा काम करें।
समझ गई। तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव के हिसाब से प्रायश्चित सिर्फ मन में पछताना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें अपनी गलती मानना है, भविष्य के लिए संकल्प लेना है और जो नुकसान हुआ उसे ठीक करने की कोशिश करनी है।
बिल्कुल सही,
ये तीनों चीजें मिलकर ही प्रायश्चित पूरा होता है। बिना ये किए समझिए कि अतीत की गलतियों की खाई भरे बिना हम आध्यात्मिक उन्नति की इमारत खड़ी नहीं कर सकते। तो अंत में ये विचार रह जाता है कि हम सब सोचें कि हमारे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, जिनसे किसी को कष्ट या नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई के लिए हम क्या रचनात्मक क्या सकारात्मक कदम उठा सकते हैं।
हाँ, यही सोचने वाली बात है और यही प्रायश्चित का व्यावहारिक रूप है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं।
ओम शांति।